हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। जैसे ही आकांक्षा थोड़ा आगे बढ़ी, रणविजय ने अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। एक पल के लिए आकांक्षा रणविजय के बेहद करीब हो गई थी। लाल आंखों से वो उसे देखते हुए बोला था, आखिरकार क्या मसला चल रहा है? ये कब होगी तुम्हारी और सिद्धार्थ की शादी? जल्द से जल्द शादी करो, उसकी जिंदगी में जाओ और उसके बाद मेरा बिस्तर गरम करो। ये उसने बेहद घटिया अंदाज में कहा था। वही आकांक्षा उसकी इस तरह की बातें सुनकर तिलमिलाकर बोली थी, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इतनी ज्यादा घटिया बातें कैसे कर सकते हो। आखिरकार तुम समझते क्यों नहीं हो? एक तो हमारी शादी होने में ही देरी हो रही है, कुछ ना कुछ मसला चल रहा है, और ऊपर से तुम्हें मेरे साथ सोने की पड़ी है। सोने के लिए तुम शादी तक का इंतजार क्यों कर रहे हो? हाँ, अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है तो चलो कहीं और चलते हैं, वहां जाकर जो करना है कर लो मेरे साथ। जैसे ही आकांक्षा ने रणविजय से इस तरह की बेशर्मी भरी बात कही, रणविजय तुरंत जहरीली मुस्कान लाकर बोला था, तुम्हारे साथ इस तरह से सोना होता तो कब का सो चुका होता, जैसे वो सोया था। जैसे ही रणविजय ने यहां पर किसी का जिक्र किया, आकांक्षा का चेहरा काला पड़ गया। वो गुस्से से बोली थी, अपनी फालतू की बकवास बंद करो। देखो, अगर तुम्हें मेरे साथ सोना है तो तुम कभी भी सो सकते हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि तुमने ये कैसी जिद लगा रखी है कि तुम मेरे साथ तभी सोओगे जब मैं सिद्धार्थ की बीवी बन जाऊंगी। आखिर तुम्हें क्या जरूरत है अपने ही चचेरे भाई की जिंदगी बर्बाद करने की? उसकी जिंदगी पर अधिकार जताने का हक तुम्हें किसने दिया? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? कहीं ना कहीं आकांक्षा को भी बाकी सब लोगों की तरह यही पता था कि रणविजय सिद्धार्थ का चचेरा भाई है। वो उसे गुस्से से घूरते हुए बोला था, अपनी फालतू की बातें बंद करो, अपना छोटा सा दिमाग ज्यादा चलाने की कोई जरूरत नहीं है, फटाफट सिद्धार्थ की जिंदगी में आओ और फिर मेरे साथ सो। ये कहते हुए रणविजय ने उसे पीछे की ओर धक्का दिया और सीधे वहां से लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ बाहर निकल गया। वहीं आकांक्षा सच में सन रह गई और बड़बड़ाने लगी, आखिर समझ क्या रखा है इसने मुझे? ये मेरे साथ करना क्या चाहता है? अगर इसे मेरे साथ सोना ही होता तो कब का सो चुका होता? फिर आखिर क्यों चाहता है कि मैं सिद्धार्थ की बीवी बनूं और उसके बाद इसके साथ सोऊं? पता नहीं कौन सी दुश्मनी का बदला ले रहा है ये। ये सोचकर उसका दिल गुस्से से भर उठा। वहीं दूसरी ओर जल्दी ही राणा मेंशन में सभी लोग जमा थे। इस वक्त अभय एक तरफ बैठा हुआ था, उसका चेहरा गहरी उलझन में डूबा हुआ था। तभी कबीर अभय को देखते हुए बोला, मुझे समझ में नहीं आता, जब तुम वहां आराम से बैठकर चाय पी रहे थे तो इस तरह से हरकत करने की क्या जरूरत थी? अरे, तुम ठीक से झलक मल्होत्रा से भी नहीं मिले, कम से कम उससे तो ठीक से मिल लेते जिससे मिलने के लिए वहां गए थे। आदित्य के माथे पर बल पड़ गए। वो बोला, मिलने के लिए गए थे? मतलब तुम लोग वहां प्लान करके मिलने गए थे? उस वक्त दादाजी वहां मौजूद नहीं थे, वो काफी थक गए थे इसलिए अपने कमरे में आराम करने चले गए थे। आदित्य की बात सुनकर कबीर जल्दी से बोला, वो एक्चुअली अभय को ना थप्पड़ वाली भाभी से मिलना था, इसलिए मैं इसे वहां लेकर गया था, लेकिन पता नहीं इसे क्या हुआ, झलक को एक नज़र देखने के बाद ये सीधा वहां से उठकर चला आया। अब आदित्य ने भौंई चढ़ाते हुए कहा, क्या बात है अभय, तुम्हारा चेहरा इतनी परेशानी में क्यों उलझा हुआ लग रहा है? क्या कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? ये सुनकर अभय अचानक उठ खड़ा हुआ और आदित्य के कंधों पर हाथ रखकर बोला, भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको उस लड़की के आगे पीछे चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसने आप पर हाथ उठाया है तो उसका बदला मैं जरूर लूंगा, लेकिन आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, उस लड़की को आपकी जिंदगी में आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लड़की किसी भी लिहाज से आपके लायक नहीं है। जैसे ही आदित्य ने इस तरह की बातें सुनी, उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था। वो गुस्से में अभय की कॉलर पकड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में इस तरह की बातें करने की? क्या कह रहे हो तुम? अभय भी कड़क आवाज में बोला, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। उसके जैसी गिरी हुई लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कहीं नहीं देखी है। आपको उसके साथ कोई रिश्ता बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर कबीर को भी गुस्सा आ गया। वो बोला, अभय तुझे हो क्या गया है? तो इस तरह से मिस मल्होत्रा के बारे में बात कैसे कर सकता है? जितना हमने उसे जाना और समझा है, वो ऐसी लड़की है कि कोई लड़का उससे दूर तक बात करना तो दूर, उसके साथ फ्लर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, और उसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता। हम उसे अच्छी तरह समझ चुके हैं, तुझे जरूर कोई ना कोई गलतफहमी हुई होगी। तब अभय थोड़ा सख्त लहजे में बोला, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, और उस लड़की का सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि वो झलक मल्होत्रा नहीं है। ओके, वो कोई झलक मल्होत्रा नहीं है, वो झलक भी नहीं है, वो सिर्फ आकांक्षा है, आकांक्षा ओबेरॉय। ये सुनकर आदित्य की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो उसकी ओर घूरते हुए बोला, क्या बकवास कर रहा है तू? आकांक्षा, उसका नाम झलक है, झलक मल्होत्रा, और वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की सीईओ है। अभय ने झुंझलाकर अपना सिर पकड़ लिया और बोला, आखिर आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं नहीं जानता कि आकांक्षा झलक बनकर यहाँ क्यों रह रही है और वो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की सीईओ क्यों बनी हुई है, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, वो लड़की किसी भी लिहाज से आपके लायक नहीं है। आप नहीं जानते, वो मेरे साथ पहले ही कई बार रह चुकी है, बल्कि सो चुकी है, और अब जब उसने मुझे मल्होत्रा मेंशन में देखा तो इस तरह बिहेव कर रही थी जैसे मुझे जानती तक ना हो। जैसे ही अभय ने ये कहा, आदित्य को ऐसा लगा मानो किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ शीशा उंडेल दिया हो। उसकी टांगे कांपने लगी। अभी कुछ ही समय पहले जिस झलक के लिए उसके दिल में खट्टा मीठा सा एहसास जागा था, अचानक उसे लगा मानो वो एहसास चकनाचूर हो गया हो। कबीर ने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया और बोला, ये क्या बकवास कर रहा है यार, तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? अभय ने कबीर का हाथ झटकते हुए कहा, कबीर भाई, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अरे, यही वो लड़की है जिससे मैं बेहद प्यार करने लगा था, और मेरे साथ रहने के बाद भी इसने मुझे किस बात पर ठुकराया पता है? इसने कहा कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, कि मैं इसे बेड पर खुश नहीं रख सकता। अब जैसे ही अभय ने ये बातें कही, आदित्य का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसके सिर की नसें जैसे फटने को हो रही थी। इतना दबाव, इतना झटका उसका दिमाग सह नहीं पाया और वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। घबराहट में कबीर और अभय ने बिना देर किए उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया। दादाजी उस समय नींद की दवा लेकर सो चुके थे, इसीलिए उन्हें परेशान करना ठीक नहीं समझा और चुपचाप आदित्य को अस्पताल ले आए। अस्पताल में रूम के बाहर कबीर दांत भींचते हुए बोला, वो लड़की बात बात पर थप्पड़ मार देती है, खुद को इतना स्ट्रांग दिखाती है, लेकिन अंदर से इतनी गिर चुकी होगी, ये तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। फिलहाल हमें आदित्य का ध्यान रखना चाहिए। फिर वो थोड़ा रुका और बोला, वैसे अभय जो कह रहा है उस पर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि मैंने भी उसे करीब से देखा है, उसके जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अगर तुझे यकीन नहीं हो रहा तो एक मिनट ये देख। ये कहते हुए अभय ने अपना फोन निकाला और कुछ पुरानी तस्वीरें कबीर को दिखाई। तस्वीरें देखकर कबीर सचमुच सन रह गया, उसके चेहरे पर गहरी हैरानी साफ दिखाई दे रही थी।
उधर अस्पताल के कमरे में आदित्य राणा की हालत बहुत खराब थी। शायद जिंदगी में पहली बार उसे किसी से सच्चा लगाव हुआ था, और उसी पल ऐसा झटका मिलने के बाद उसका मन और शरीर दोनों जवाब दे चुके थे। डॉक्टरों ने उसे इंजेक्शन दिए और करीब आधे घंटे बाद उसे थोड़ा होश आया। अभय अब भी आदित्य को देखे जा रहा था, जैसे उसकी आंखों से जवाब ढूंढ रहा हो, मानो कहना चाहता हो कि जो कुछ मैंने कहा वो सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आदित्य के चेहरे के भाव बिल्कुल स्थिर थे, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक गहरी चुप्पी। ये देखकर अभय और भी बेचैन हो गया। आखिरकार आदित्य ने आंखें बंद कर लीं और आराम करने की कोशिश करने लगा। डॉक्टर ने उसके दिमाग के तनाव को शांत करने के लिए कुछ दवाइयां दी थीं ताकि उसे थोड़ी राहत मिल सके। दूसरी ओर झलक अपने कमरे में थी। अनामिका तुरंत उसके पास आई और मुस्कुराकर बोली, वैसे यार तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, कितने आराम से आदित्य राणा के साथ सफर किया, एक हैंडसम मुंडे के साथ चिपक कर बैठना, उसका तुझे कसकर पकड़ना, बाइक पर साथ आना, ये सब कुछ कम रोमांचक नहीं था? लेकिन झलक के चेहरे पर बस हल्की सी मुश्किल से दिखाई देने वाली मुस्कान थी। अनामिका ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, देख मैं मजाक कर रही थी, लेकिन सच में अब तू अपनी जिंदगी को एक मौका दे। मुझे पता है दादाजी ने आदित्य राणा को तेरे पीछे उस दिन भेजा था, और शायद तुझे उस बात का गुस्सा भी है, लेकिन उन्होंने जो किया सिर्फ तेरी भलाई के लिए किया, तू उनसे नाराज मत हो। झलक ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी कमरे के दरवाजे पर आहट हुई। आरव और दादाजी पहले से ही वहां खड़े थे। दादाजी को अपने कमरे में देखकर झलक थोड़ी हैरान रह गई, साथ ही वो समझ भी चुकी थी कि वे किसी बेहद जरूरी बात के लिए उसके पास आए हैं।